मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 13 अप्रैल 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने नौजवान मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन प्रिय मित्रों के नाम हैं राम आशीष वर्मा, आप गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, अबू रईहन गोपालगंज बिहार से हैं, एमडी फिरदौसी आप भी गोपालगंज बिहार से हैं, अनोल पटेल बासवा उत्तर प्रदेश से हैं, साकेत भारती गिरडी झारखंड से हैं, प्रियंश संधु आप मंडी धनौरा उत्तर प्रदेश से हैं और हरेंद्र कुमार महेशपुर जिला सपौल बिहार से हैं। तो राम आशीष, अबू रईहान, एमडी फिरदौसी, अनोल, साकेत, प्रियंश और हरेंद्र आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अब थोड़ी सी कुछ सूचनाएं जो मैं सामान्यतया आपको हर शुक्रवार को देता हूं और वे सूचनाएं यह कि शनिवार और रविवार को चूंकि केंद्र सरकार की छुट्टी होती है और जनरली हम लोग केंद्र सरकार जनरली मतलब इनफैक्ट एकमात्र ये कह लीजिए कि हम लोग केंद्र सरकार की छुट्टी को फॉलो करते हैं क्योंकि उसका वो पूरे के पूरे देश के केंद्र सरकार के दफ्तरों पर लागू होती है। तो दोस्तों शनिवार और रविवार इन 2 दिनों में आपको डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स उसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से कि अभी तक मिलती रही हैं। साथ ही आपको कुछ एडिशनल चीजें भी कल हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उसका कारण पर्पज यही होता है कि सैटरडे को आप डेली ऑडियो लेक्चर नहीं सुनेंगे, संडे भी होगा छुट्टी होगी, संडे को तो आपको कुछ भी चीजें नहीं दी प्रोवाइड ही नहीं की जाएंगी, फिर आप अपने दूसरे कामों से भी मुक्त रहेंगे। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो आपकी छुट्टी होगी, सर्विस कर रहे हैं तो आपकी छुट्टी होगी, तो आपके पास समय काफी होगा, तो उस समय का एक छोटा सा हिस्सा एकेडमी फॉर एक्सीलेंस को भी आप दे सकें, इसलिए कुछ चीजें हम लोग और प्रोवाइड करते हैं। उसके तहत होती है योजना और कुरुक्षेत्र के 4 आर्टिकल्स, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में, 4 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है दोस्तों वो है वीकली क्वेश्चन जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर तैयार किया जाता है, प्लीज उसके प्रति आप पूरी गंभीरता बरतें, यही आपको सच पूछे तो सही मायने में सिविल सर्वेंट बना पाएगा। जब तक हम अच्छे आंसर नहीं लिखने के योग्य अपने आप को बना पाएंगे मित्रों तब तक नंबर कैसे मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मन मार कर करें बेमन से या फिर पूरे उत्साह के साथ करें, लेकिन करना अनिवार्य मुझे लगता है। इसके बाद मित्रों एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनके पास भेजा जाएगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मित्रों जहां तक आइए मुख्य विषय का सवाल है, आज हम वित्त आयोग और दक्षिण भारत के जो कुछ राज्य हैं जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं उस पर कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग दूसरे विषयों को थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूज में आप पढ़ रहे हैं, चैनल्स पर भी आप देख रहे हैं कि भारत में अभी रक्षा प्रदर्शनी चल रही है, डिफेंस एक्सपो चल रहा है और इस बार कुछ मुझे लगता है कि रक्षा उत्पादन को लेकर के ज्यादा बातें हो रही हैं, अधिक बातें हो रही हैं। देखिए सिविल सर्विस के लिए कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसके बहुत से क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पर हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि नहीं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रक्षा उत्पादन रक्षा सामग्री उत्पादन को लेकर के इस साल जो बातें हो रही हैं तो हो सकता है कि ये एक मुख्य परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो। इसमें खासकर जो आपको ध्यान देना है पूरे के पूरे रक्षा उत्पादन में मित्रों वो ये, न्यूज में भी आपने सुना कि ये मेक इन इंडिया की आत्मा है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है रेडियो न्यूज में, आपने ध्यान दिया होगा मेक इन इंडिया की आत्मा है। देख रहे हैं आप कि जो जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तब से उसने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया है, जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, आप कह लीजिए स्वदेशी की दृष्टि से भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब आप मेक इन इंडिया जैसे बड़े प्रोग्राम के लिए आत्मा किसी को बताते हैं तो डेफिनेटली उसका कद एकदम से बढ़ जाता है। तो मतलब पूरे के पूरे हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है या मेक इन इंडिया के जितने भी पक्ष हैं उन सब में, या फिर डिफेंस प्रोडक्शन टॉप पर आ जाता है। तो मित्रों, आपको डिफेंस प्रोडक्शन पर थोड़ी सी अलग तरीके से, या कह लीजिए ठोस तैयारी करनी चाहिए, ठोस तैयारी होनी चाहिए। ठोस तैयारी का मतलब है कि आपको मालूम है कि भारत हथियारों का आयात करने में विश्व के कुछ प्रमुख देशों में एक है। इतना बड़ा हमारा राष्ट्र है तो उसके हिसाब से हमें सेना रखनी पड़ती है, तो स्वाभाविक है कि और एक आपको ज्यादा से ज्यादा आयात करना पड़ेगा। और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां स्वदेशी उत्पादन उतना नहीं है। स्वदेशी उत्पादन क्यों नहीं है, इसके रीजन्स आप जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास जिसकी कमी है। फिर उससे भी बड़ी बात है टेक्नोलॉजी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए, हमारे पास उसकी भी कमी है। तो भारत कोशिश में है, इसीलिए आपने देखे कि भारत ने फिर इसके दरवाजे खोले। पहले तो ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र में था, हम रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे लोगों को घुसने नहीं देना चाहते थे। और दूसरे लोगों में प्राइवेट सेक्टर भी था, ये बहुत ही सिलेक्टेड एरियाज में वो काम करते थे, और विदेशियों का तो सवाल ही नहीं क्योंकि रक्षा से जुड़ा मामला था। लेकिन अब इसमें भी एफडीए ओपन कर दिया गया है ना, एक सिस्टम के तहत ओपन कर दिया गया है और विदेशियों को आमंत्रित किया जा रहा है। और अगर भारत में उत्पादन होने लगता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो देखिए कि कितनी तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारी स्वदेशी तकनीकी विकसित होगी, और साथ ही साथ हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और न्यूज में आपने एक बात और भी सुनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पूरे देश में रक्षा नवाचार केंद्र खोले जाएंगे, इनोवेशन के केंद्र खोले जाएंगे, खासकर स्टार्टअप्स के लिए, जो लोग एकदम शुरुआत करना चाहते हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो इस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इसे तरजीह देनी होगी। एक छोटी सी खबर थी मित्रों, एक तथ्य के रूप में आप केवल दिमाग में रख लें, वो है कि अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होने थे, जिस पर अभी कोर्ट ने, न्यायालय ने रोक लगा दी है। बस केवल एक तथ्य भर है, आगे देखिए कि क्या होता है। मित्रों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है, आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल 1919 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन, किंतु बहुत दुर्भाग्यजनक, दुखी कर देने वाली घटना घटी थी। आप जानते हैं वो जलियांवाला बाग की घटना थी। आज भारत उसके 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। ये जो घटना है आप कह लीजिए 100वां वर्ष है ना, 2019 में जाकर के 100 वर्ष पूरे होंगे। मित्रों, इस घटना की चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज वह दिन है तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। और आप सबकी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से, उस दुर्घटना में जितने भी शहीद हुए उन सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, इस घटना को आधार बना करके मोस्ट प्रोबेबली यदि कोई दूसरी इंपॉर्टेंट घटना नहीं हुई या दूसरा इंपॉर्टेंट विषय नहीं आया, तो सोमवार को मैं इस तरह से बात करूंगा कि आपको मेंस और प्री के लिए हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना, उस क्षमता के बारे में, उस क्राइटेरिया के बारे में हम लोग मुख्य विषय के तहत कुछ बातें करेंगे। लेकिन आज चूंकि दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए अभी मैं उसे टच नहीं कर रहा हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, वह है वित्त आयोग एवं दक्षिण भारत। जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है, अभी तो वित्त आयोग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत शुरू से ही कुछ मामलों को लेकर के एक संघात्मक हमारा जो स्वरूप है, ये नहीं कि वो संघात्मक स्वरूप पर कोई आघात कर रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न उठाता रहा है और लॉजिकली उनके प्रश्न गलत नहीं होते हैं। और उसका ठीक है, उसके जो कारण है वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस जो एरा रहा है, स्वतंत्रता पूर्व का जो काल रहा है, वो भी उसके केंद्र में है। अभी देखिए जो प्रश्न उठाया गया, आपको मालूम है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, ये आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल है 280। और 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे, राइट, वित्त आयोग का गठन करेंगे। और फिर वित्त आयोग खासकर केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स का कलेक्शन होगा और उसका कैसे बंटवारा होगा, इसके बारे में वो रिकमेंडेशन अपनी वो देगी। ये सामान्यतः टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ये उससे अपेक्षा की जाती है वित्त आयोग से। अभी हमारा 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है। 15वें वित्त आयोग को लेकर के अब दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने अपनी एक आवाज उठाई है और उसे समझना बहुत जरूरी है। वो आवाज उनकी मित्रों कुल लेकर के ये है कि जो कर का बंटवारा होता है, आपको मालूम है कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, कस्टम एक्साइज केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, लेकिन वो उन जगहों से कलेक्ट करती है कि जिसके जो फैक्ट्रीज आपके स्टेट में खुले हुए हैं, ठीक है। तो अब केंद्र सरकार जब राज्यों के को उसमें जब होता है कि उनको कितना शेयर दिया जाए, तो बट नेचुरल है कि वो फिर वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर उनको उसका शेयर वो देती है। अभी जो रेफरेंस दिया गया है, मतलब कि वो किसको आधार बनाए कि टैक्स का बंटवारा कैसे कैसे हो, कितना कितना किसको दिया जाना चाहिए, तो उसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि जो 2011 की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसको आधार बनाया जाए। यानी कि जनसंख्या भी एक क्राइटेरिया है, कि बट नेचुरल है कि इसका सामान्य सा अर्थ यही हुआ कि भाई जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां के उन राज्यों को धन की ज्यादा जरूरत है तो वहां ज्यादा दिया जाए, कुछ इस तरह सेंस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये केंद्र सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन यह है कि जनसंख्या भी एक क्राइटेरिया है। 2011 एक अच्छी बात है कि कम से कम इसमें 2011 की जनसंख्या की बात कही गई, अदरवाइज इससे तो इससे पहले तो आप कल्पना करके देखिए कि 1971 की जनसंख्या की बात होती थी। साउथ ने इस पर आपत्ति की है, उनकी देखिए आपत्ति क्या है। उनकी आपत्ति यह है कि जो साउथ इंडिया है उसने जनसंख्या कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसने अपने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। नियंत्रित करने के कारण उनकी जनसंख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से नॉर्थ की जनसंख्या बढ़ रही है, उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, उत्तर भारत ने भी अपने ढंग से कोशिश की है लेकिन उसे उतनी सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है, राइट। तो अगर जनसंख्या को क्राइटेरिया बनाया जाए तो स्वाभाविक है कि उत्तर भारत को जो अनुदान है वो कुछ ज्यादा मिलेगा। और इनका यह कहना है कि हमारे यहां जो जनसंख्या नियंत्रण में आई है उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, हमारे अपने जो रिसोर्सेस थे, हमारी अपनी जो आय होती थी राज्य की, उस आय को हमने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर उसका एक बड़ा भाग खर्च किया है, तब आज हम इस स्थिति में हैं। जैसे आप केरल को ले लीजिए, केरल ने जनसंख्या पर नियंत्रण चलिए अगर पा लिया है तो आप देखिए कि वहां लिटरेसी को उन्होंने किस लेवल तक पहुंचा दिया, 100% लिटरेसी पर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो अगर उन्होंने 100% लिटरेसी हासिल की है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उस लिटरेसी अभियान के लिए उन्होंने धन खर्च किया होगा, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे। तो इनका यह कहना है कि हमने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और जनसंख्या नियंत्रण अभियान को सफल बनाया, तो उसके सजा के तौर पर अब हमें कम पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि हमें रिवार्ड मिलना चाहिए, इसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह उनकी मांग है, अखबारों में और भी है, आप डिटेल में देख लेंगे। तो मित्रों यहां केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इसका 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 क्लेरिफाई किया है, इसको स्पष्टीकरण दिया है कि बोले नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमने वित्त आयोग से ये कहा है कि वह देखे कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उसका उन्हें रिवार्ड दिया जाए। मतलब दक्षिण के राज्यों में इस बात को लेकर के जो एप्रिहेंशन है, जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मित्रों मैंने आपको केवल बेस बताया है, इसको लेकर के आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। करंट कंटेंट में भी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, और आज के भी प्रेस क्लिपिंग्स में आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में इतना ही, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: प्रिया मिश्रा, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, सुमी गुप्ता मुंबई से, दीपक हरियाणा से, और अनिकेत यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों 2 दिन की अब बीच में छुट्टी है, मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए कि आपके ये दोनों दिन बहुत ही खुशी के साथ व्यतीत हों, आपको नई ऊर्जा मिले, ताकि आप सोमवार को नई ताकत और उत्साह के साथ उस सप्ताह के दिनों का स्वागत करने के लिए अपने आप को मुफीद पाएं, फिट पाएं। तो दोस्तों अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।